ओम शांति। जनवरी मास में विशेष 18 जनवरी से संबंधित बाबा का जो विशेष प्रोग्राम रहता है, इसमें भाग लेने के लिए सब भाई बहने जो भी भारत के कोने कोने से और विदेशों से यहाँ खास इकट्ठे होते हैं, हम सारे ब्राह्मण परिवार के लिए ये दिन बहुत विशेष है। कई नाम इसको दिए गए, स्मृति दिवस, स्मृति दिवस, समर्थी दिवस, अव्यक्ति दिवस। ये एक ऐसा दिन है जिस दिन को जब सोचते हैं तो भिन्न भिन्न प्रकार की बातें मन में आने लगती हैं। कभी बाबा के साथ के अनुभव, कभी उनकी शिक्षाएं, कभी उनके चरित्र, बहुत सी बातें दिल में आती हैं और उन सब का सार तो एक ही निकलता है कि ये दिन विशेष हम सभी ब्राह्मण परिवार के सदस्यों को, सब भाई बहनों को, चाहे साकार बाबा के मम्मा के दिनों से हैं और चाहे उनके अव्यक्त होने के बाद के दिनों से हैं, सबको ये स्मृति दिवस विशेष यही स्मृति दिलाता है कि जो ब्रह्मा बाप ने अपने लक्ष्य अनुसार अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त किया, तो हम बच्चों को भी बाबा का जो इशारा है, फॉलो फादर। स्मृति दिवस केवल ये स्मृति नहीं दिलाता कि इस दिन बाबा अव्यक्त हुए, दुनियावी तरीके से ये स्मृति दिवस नहीं है, बल्कि इसका नाम स्मृति दिवस, सो समर्थी दिवस, समर्थ बनने का दिवस। जब बाबा का एक ऐसा विशेष मिसाल है जो बाबा के वाणी में भी हम लोग बीच बीच में कभी पढ़ते हैं, सुनते हैं कि हम आत्माएं शरीर के मालिक हैं और अपनी इच्छा से, इच्छा शक्ति से हम शरीर से न्यारे हो जाएं। आत्मा जब इतनी शक्तिशाली हो तो अपनी स्वइच्छा से अव्यक्त हो सके, और ये एक मिसाल ब्रह्मा बाप का हम सब बच्चों के लिए विशेष है कि ऐसा पुरुषार्थ करें, और वो पुरुषार्थ तो जीते जी करना पड़ेगा। इसलिए बाबा के हर वाणी में, चाहे वो साकार है चाहे अव्यक्त है, खास उसमें इशारा यही मिलता है कि बीच बीच में ऐसा अभ्यास चाहिए। यूं तो प्रातः काल का समय जो विशेष अभ्यास का है, उस समय का अभ्यास भी ऐसा शक्तिशाली, निराकारी स्थिति का, अव्यक्त स्थिति का, और उसके बाद सारे दिन में भी बीच बीच में یہ سمرتی سوئم کو دلاتے رہیں تب بابا کی طرح اپنے سامنے کوئی مثال ہوتا ہے تو اس کو فالو کرنا سہج ہوتا ہے۔ تو برہما بابا کا یہ وشیش ہم سب کے لیے یہ جو دیوس آتا ہے یہ دیوس وشیش ایک سمرتی دلاتا ہے، اس کا نام ہی سمرتی دیوس اس لیے ہے، یہ سمرتی دلاتا ہے کہ ہم راج یوگ ابھیاس سے اتنے شکتی شالی بن جائیں، ایسی ستھتی ہماری ہو کہ ہم اپنے سو اچھا سے شریر سے نیارے ہو سکیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، چھوٹی نہیں ہے۔ سادھارنتیا جیسے شریر چھوڑتے ہیں کوئی بیماری کے کارن، کوئی اور بات کے کارن، ایسا نہیں ہے یہ، لیکن یہ وہ ابھیاس ہے کہ ہم آتم سمرتی میں رہتے رہتے اور سرو شکتیوان باپ کے سنگ میں رہتے رہتے اتنے شکتیشالی بنے کہ پرکرتی پر وجے ہو، شریر سے اپنی اچھا سے ہم الگ ہو سکیں اور یہ سنسکار ہمارے ساتھ بھوش میں کئی جنموں تک چلتا ہے۔ ستیوگی جیون، تریتا یوگی جیون جس کو امر پد کہتے ہیں، وہ امر پد دلانے والا ابھیاس ہے یہ، جہاں مرنا شبد استعمال نہیں ہوتا ہے۔ جب بھی دیوی دیوتا ایسا محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے اپنا پورا جیون جی لیا، 150 ورش جی لیے، 125 ورش جی لیے، اب ہمیں نیا شریر لینا ہے، تو سو اچھا سے پرکرتی کو وش کر کے شریر سے الگ ہوتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے اور اس کو کہیں گے پرکرتی جیت بننا۔ اس کا ابھیاس جب یہ وشیش سمرتی دیوس ہم سب کے سامنے آتا ہے تو یہ وشیش سمرتی دلاتا ہے کہ ہے آتماؤں، بہت پیار سے بابا کہتے میرے سکیل دے بچوں، ایسا سمرتی سوروپ بنو، کیونکہ 18 جنوری کو خاص سمرتی دیوس کے روپ میں ہم سب بھی مناتے ہیں۔ کس چیز کی سمرتی؟ ایک یہ سمرتی کہ یہ دن بابا نے اپنی سمپورن ستھتی کو پراپت کیا، اور منانے کا ارتھ ہے فالو فادر، ہم باپ کو فالو کریں، کہ ہم بھی ایسا ابھیاس کریں کہ جیسے برہما باپ نے بیٹھے بیٹھے اور جانتے ہوئے یہ چنتا نہیں کی کہ میرے جانے کے بعد اس یگیہ کا کیا ہوگا، جو اس کے یوگیہ تھے ان کو ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے اور ان کو ایمپاور کیا، ان کو وہ پوری پاورز جیسے اشارے سے ٹرانسفر کر دی، جو اس کارے کو آگے چلانے کے یوگ دادی جی ان کے حوالے کر کے، لیکن ساتھ میں یہ بھی وعدہ کیا کہ جب تک ستھاپنا کا کاریہ پورا نہیں ہوا تب تک باپ دادا ساتھ رہیں گے، کیونکہ جب بابا اویکت ہوئے تو ہر ایک برہمن کے من میں یہ ایک سنکلپ تھا، چاہے اس سمے تھوڑے تھے لیکن یہ سنکلپ ضرور تھا کہ اب کیا، بابا نے تو وعدہ کیا تھا کہ سب کو نینوں پہ بٹھا کے ساتھ لے کے جائیں گے، اب بابا اکیلے چلے گئے، ہم سب کی بدھی تو क्या कहें, बाबा के समान उस समय बेहद की बुद्धि नहीं थी, और वो संकल्प चलता रहा कईयों का 3-4 दिन तक। बाबा के अव्यक्त होने के बाद 3 दिन बाबा का पार्थिव शरीर मधुबन में छोटे हॉल में रखा था, योग लगातार चलता रहता था। दीदी जी जब तक बनारस से लौट करके आए, उस समय बनारस गई हुई थी दीदी मनमोहिनी, और सब भाई बहने जब तक इकट्ठे हो, एक तरफ योग कर रहे थे लेकिन सबके मन में यह संकल्प था कि अब क्या, आगे क्या होगा। बाबा ने तो वायदा किया था बच्चों को नैनों पर बिठाकर लेके चलेंगे, ऐसे ऐसे कईयों के मन में प्रश्न थे, लेकिन जानी जाननहार बाप जब अंतिम संस्कार हुआ और उसके बाद बाबा को भोग स्वीकार कराना था, उस टाइम पर छोटे हॉल में मधुबन में जो भाई बहनें बैठे थे वो इसी इंतजार में थे कि अब संदेशी आकर के संदेश सुनाएंगे, लेकिन उस समय संदेशी की बजाय अव्यक्त बाप दादा का पार्ट वहां से शुरू हुआ, और पहली अव्यक्त वाणी 21 जनवरी 1969 को हम सब ने पहली बार सुनी, जो बाबा के उस समय बच्चे उस हॉल में थे, छोटे हॉल में, जिनके मन में वो अनेक प्रश्न थे, उन सब का उत्तर बाबा ने एक एक करके स्वयं ही दिया। ये पूछा नहीं कि आपके मन में क्या प्रश्न है, एक एक का उत्तर दिया। और उसमें सबसे बड़ी बात, बड़ी मुख्य बात, जब तक स्थापना का कार्य पूरा नहीं हुआ है तब तक बाप दादा बच्चों के साथ रहेंगे। आप सब भाई बहने कई पहली बार आए होंगे, कोई दूसरी बार इस समय आए होंगे, ये प्रैक्टिकल एक प्रूफ है कि आपसे मिलने स्वयं बाप दादा आने वाले हैं। अगर वो पार्ट पूरा हो जाता, आज कितने वर्ष हो गए हैं, 1969 और 2003, ये सिद्ध करता है कि ये ईश्वरी ज्ञान यज्ञ जो है, जिस बात के लिए बाबा ने स्थापन किया, ब्रह्मा बाबा को निमित्त बना के शिव बाबा ने स्थापन किया, वो कार्य अधूरा रहने वाला नहीं है। कभी कभी यज्ञ का इतिहास जब सुनेंगे आप, कुछ ऐसी बातें हैं जो आम तौर पे सुनने को नहीं मिलती, बहुत समय कम होता है, क्लास बहुत होते हैं, लेकिन हम लोग जब शुरू में आए आज से 44 साल पहले, यूं तो मेरे से भी कई सीनियर पहले आने वाले होंगे, उन दिनों में इतनी क्लासेस नहीं होती थी। सुबह को 15 मिनट योग, मम्मा की वाणी 10 मिनट, और फिर बाबा की वाणी आधा घंटा पौना घंटा, और फिर रात को जो क्लास होता था, उस समय सेंटर्स का जो सेवा समाचार, वो पत्र सुनाते, मम्मा आकर के सबका खुश खैराफत पूछती, और बाबा आकर के 10 मिनट नहीं तो 15 मिनट वाणी सुनाते। सारा दिन सुबह से शाम तक अनुभव सुनने का, अनुभव की लेन देन, या तो बाबा कहीं ना कहीं पिकनिक पे भेज देते, मम्मा के साथ भेज देते, विश्व रतन दादा के साथ भेज देते, और बाबा की एक खास बात लास्ट तक कि बच्चे ये ईश्वरी विद्यार्थी जीवन है, गॉडली स्टूडेंट लाइफ है। बाबा बहुत प्यार से कहते थे, गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज दी बेस्ट। स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है? सीखने का, जानने का और अनुभव करने का हर कदम पे। लेकिन बाबा का स्टूडेंट लाइफ से मतलब ये रहता कि सारा दिन कोई बैठ करके क्लास में हॉल में ही बैठे रहना है, ऐसा नहीं है। सारा दिन हर एक्टिविटी में कुछ ना कुछ सीखना है, और उसमें खास हम जब पहली बार बाबा से मिलने आए थे और वो पहचान मिली, सारे दिन की दिनचर्या को आज भी याद करते हैं, तो बाबा कदम कदम पे अपनी एक्टिविटी से हम बच्चों को ये सिखाते थे कि कैसे हम सारा दिन चलते फिरते याद में रह सकते हैं। जब योग करते हैं तब तो विशेष होते हैं। जब मुरली सुनते थे बाबा बार बार याद दिलाते थे, बच्चे कौन सुना रहा है, किसकी स्मृति में बैठे हो, किससे सुन रहे हो, ये बाबा भी सुन रहा है बीच बीच में, सुनाने वाला आके सुना रहा है। और उसके बाद मुरली के बाद जो बहुत अच्छी नई नई पॉइंट्स होती थी, बाबा को उसकी कितनी वैल्यू थी, कितनी एप्रिसिएशन थी, जो कहा जाता है कि जौहरी कोई ही हीरे ज्वारात की पहचान होती है, तो ब्रह्मा बाबा को ज्ञान के जो अमूल्य रतन मुरली के टाइम मिलते थे, बाबा बहुत एप्रिशिएट करते। और उसका एक सहज प्रूफ आपके सामने कि मुरली के बाद पहले तो हम बच्चों को टोली खिलाना, बहुत प्यार से गोद में भी बिठा के, लेकिन उसके बाद बाबा अपने रूम में आकर के अपना पैड और लाल पेंसिल लेकर के, जो विशेष सर्विसेबल बच्चे, जैसे दादी जी पटना में थी, दीदी मनमोहिनी उस समय दिल्ली में थी, गंगे दादी कानपुर में, चंद्रमणि दादी अमृतसर में, पुष्प शांता दादी और ब्रिजिंद्रा दादी वो अपने बॉम्बे में, जगदीश भाई, तो जो ऐसे मुख्य मुख्य सेवाधारी, फट से उनको बाबा का जो पैड था, पैड लेना और लाल पेंसिल से हरेक को चिट्ठी में मुरली के मुख्य पॉइंट्स, देखो आज बाबा ने क्या ज्ञान रतन दिए हैं, और वो एक एक करके इतना दिल से बाबा लिख के भेजते थे, रोज का रोज। आप हम सभी कभी भी इतने पत्र नहीं लिख सकते जितने बाबा लिखते थे, 20-25 पत्र एक एक दिन में लिखना। आज आपके कंप्यूटर आ गए हैं और कई साधन हैं, इतने फिर भी नहीं लिखे जाते, और हर एक को ऐसा पर्सनल वो पत्र जाए, दादी जी पढ़े तो उनको लगे मुझे ही विशेष लिखा है, जगदीश भाई को जाए तो वो समझे मुझे ही विशेष लिखा है, हम लोगों को बॉम्बे में आए तो ऐसे लगे हमें ही खास लिखा है, चंद्रमणि दादी को जाए तो उनको लगे मुझे ही खास लिखा है। ऐसी भाषणा पर्सनल दे करके, लेकिन उसमें ज्ञान रतन जो जो बाबा की वाणी में कभी कभी आप सुनते हैं, बच्चे बाबा तुम्हें एक एक ज्ञान रतन जो है इतना अमूल्य है, लाखों की कीमत है उसकी। बाबा को वो वैल्यू थी ज्ञान के, जितने भी नए नए कोई ऐसे पॉइंट्स निकलते थे। और जब हम लोगों को वो पत्र मिलते, आप सोचो आपको पत्र आए तो क्या दिल में होगा। इस स्मृति से कि ये पत्र लिखने वाला कौन है, कि कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति हमें नहीं लिख रहा है, क्योंकि जिनके पास वो पत्र आते थे उनको वो पहचान थी कि स्वयं। थोड़ा सोचिए इस बात पर, आप विचार कीजिए। पहले एक गीत था, भगवान तुझे मैं खत लिखता पर तेरा पता मालूम नहीं, बहुत पुराना गीत है ये। लेकिन जिनको पता मालूम पड़ गया उनके पास पत्र भगवान से लिखा हुआ आए तो कैसा लगेगा। वो पत्र आते ही और सब काम छोड़ करके बैठ जाते थे। दादी जी सुनाएंगी, जहां पर जो पत्र जाएगा सब सेंटर वालों को बिठा के उसी समय देखो बाबा ने क्या लिखा। बहुत खुशी और बड़ा उमंग और उस जोश से आगे सेवा होती थी, और उसमें बड़ी एक पर्सनल पालना थी माता पिता की। जिन्होंने वो पालना पाई है वो इतने शक्तिशाली आत्माएं बनी हैं जो अनेक आत्माओं के कल्याण के निमित्त बने। और बाबा फिर कहते थे अभी याद में बैठे, मुरली सुनी, सेवा भी की, जब तक सेवा ना करें तब तक भोजन नहीं करना है। ये भी विशेष एक बात थी। बहुत मजा आता था इन बातों को प्रैक्टिकल में लाने में। बॉम्बे की बात है, बाबा उस समय वहां आके रहे थे हैंगिंग गार्डन के पास, और ये बात खास बाबा की कि जब तक सेवा ना करें तब तक भोजन नहीं करना है, नाश्ता नहीं करना है। उसकी प्रैक्टिस कराई बाबा ने, किसी ना किसी को जा करके संदेश दे के आना और उसके बाद नाश्ता करना। और बाबा इतनी रुचि से सुनते, अच्छा क्या समझा के आए वो बताओ, सुनने के बाद फिर करेक्शन करनी, पर्सनल टीचर बन करके, बच्चे ऐसे नहीं समझाना था, अगर बाबा तुम्हारी जगह होते तो ऐसे समझाते। भाव क्या उसमें, चाहे कोई किस भी धर्म का हो, उनको ये पहचान मिलनी चाहिए कि ये ईश्वरी ज्ञान और योग जो अभी सिखाया जा रहा है ये सभी धर्मों की आत्माओं के लिए। उनको ये महसूस हो कि उनके परम पिता की तरफ से ये ज्ञान मिल रहा है, ये कोई साधु संत देने वाला नहीं। तो ईश्वरी विद्यार्थी जीवन बाबा को बहुत प्रिय। अब विद्यार्थी जीवन में सारा दिन बैठ के पढ़ना होता है क्या? विद्यार्थी जीवन में तो खेल भी होता है, तो बाबा खेल भी खेलते बच्चों को रिफ्रेश करने के लिए। कभी इंडोर गेम्स भी खेलते, और शाम के टाइम बाबा की दिनचर्या इतनी बैलेंस्ड होती थी। हम तो आज उस चीज को अगर फॉलो करें तो बाबा की तरह, आप सोचिए कि 93 की एज तक चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ी बाबा को। आज भी आप जाकर के मधुबन में जो बाबा का ट्रांसलाइट है उसको थोड़ा नजदीक से जाके देख लो, बाबा के नैनों को देखो, स्थूल नैनों को भी देख लो, ऐसा स्पष्ट इतना साफ नैन किसी के नहीं होता। वो विशेष था, शिव बाबा का साकार माध्यम ऐसे ही कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं, जो इस जन्म में ब्रह्मा और अगले जन्म में सब जानते हैं क्या बनने वाला है, क्या बनने वाले हाँ? श्री नारायण बचपन में क्या होंगे, श्री कृष्ण। तो आप सोचिए कि 84 जन्म ही उनका नंबर वन हर तरह से वो प्रैक्टिकल देखने को मिला, और ना सिर्फ देखने को, साथ और उनका हाथ, उनका प्यार, उनकी गाइडेंस, उनकी शिक्षा, ऐसी पालना मिलने वालों को दिल में क्या आएगा। तो मुझे ये याद आता है, मैं पहली बार जब बाबा से मिलने आया था, उस समय वो पुराना ही बंगला था, बाबा के रूम के पास दूसरी साइड हम रहे थे। सुबह से शाम तक एक ही लगन थी, जब टाइम मिले बाबा के पास जाके पहुंच जाते थे, और जो बाबा के महावाक्य हो फट से नोट करने लगते थे। साथ में बाबा खिलाते, खेल खिलाते, बैडमिंटन खेला बाबा के साथ। पर उस समय बाबा को देखने लायक कि बाबा खेल खेल रहा है, लेकिन खेल खेलते हुए याद में कैसे रहते, स्मृति स्वरूप, प्रैक्टिकल। बहुत प्यार से बैडमिंटन खेलते, जब उनके पास वो चिड़िया जाए और बाबा शॉट लगाएं, प्यार से कहेंगे ले बच्चे, लेकिन वो शॉट इतना जोर से होता था कि कोई उठा नहीं सकता। फिर बाबा कहते थे बच्चे इसमें डबल फोर्स है, ब्रह्मा बाबा तो बुढ़ा बाबा है, इसमें थोड़ा इतनी ताकत है, ये तो वो आकर के मदद करता है। भाव उसमें क्या था कि बच्चे खेलते हुए भी आपका बुद्धि योग शिव बाबा से ले। जब देखो बाबा को एकदम अपने, फोटोग्राफ्स में देख लो जाकर के, जब आप ऊपर जाएंगे, जिन्होंने नहीं देखे हो, छोटे हॉल में बाबा के कई फोटो लगे हुए हैं, भिन्न भिन्न समय के, भिन्न भिन्न चरित्रों के। हर एक फोटो के अंदर आपको बहुत स्पष्ट दिखेगा, बाकी सब लोग कैमरे की तरफ देख रहे हैं, और बाबा अपने लगन में मगन है। चाहे कितना बड़ा ग्रुप हो, चाहे कोई अकेले मिल रहे हो, चाहे 10 मिल रहे हो, चाहे 20 मिल रहे हो, लेकिन बाबा के दिल में एक बात ऐसी पक्की थी जो हम बच्चों को बार बार वाणी के अंदर सिखाते हैं, कैसे शिव बाबा को निरंतर याद करें। याद का ऐसा स्वरूप बन गया लास्ट में, बाबा कभी कभी खुद आश्चर्यवत होते थे, ये शब्द बाबा ने कहे या ब्रह्मा बाबा ने कहे। हम लोग तो बचपन में बाबा के साथ बच्चों की तरह ही रहे, कभी कभी बाबा को हंसी में कहते थे बाबा क्यों हम लोगों को आप एक्स्ट्रा ड्रिल कराते हो, कहते हो वहां याद करो, जब हैं ही आप साथ में दोनों, फिर क्यों घड़ी घड़ी, कभी कहते हो परमधाम में बुद्धि ले जाओ, कभी वहां याद करो, फिर जब उसकी तरफ बुद्धि जाएगी फिर बाबा कहेगा अरे बच्चे सामने मैं सुना रहा हूं, तुम वहां जाके याद कर रहे हो। तो बाबा बड़े प्यार से कहते थे तुम तो भगत हो, लेकिन भाव ये है कि बहुत ही हम सब खुशकिस्मत हैं, सारे कल्प के अंदर, ये सोचने की बात है, सारे कल्प के अंदर हम आत्माओं को एक ही बार ये मौका मिलता है कि जब स्वयं परम पिता परमात्मा कहो, भगवान कहो, शिव बाबा कहो, इस समय प्रैक्टिकल में जिनका गायन करते थे पहले, तमेव माताश्च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव, वो प्रैक्टिकल में मात पिता बंधु सखा, इस समय हम बच्चों के साथ आकर के सारे ही संबंध दे करके, और ये अनुभव कराया ब्रह्मा बाबा के द्वारा, कि वास्तव में मनुष्य जीवन कितनी श्रेष्ठ है, कितनी महान है और कितना इसमें हम ईश्वरी गुणों को व्यक्त कर सकते हैं अगर स्मृति में रहें। और बाबा का इशारा बार बार, ब्रह्मा बाबा का खासकर, मम्मा का भी ऐसे ही देखा हम। एक बार मम्मा के साथ बॉम्बे में रमेश भाई के साथ कार में थे, चौपाटी से टर्न किया भारतीय विद्या भवन की तरफ, तो वहां एक साइन बोर्ड लगा हुआ था, वो हम लोगों का ध्यान गया क्योंकि उन दिनों में प्रदर्शनी के चित्र नए नए बना रहे थे। तो मम्मा से पूछा, मम्मा आपको ये कैसा लगा एडवर्टाइजमेंट जो था, एक बैटरी का एडवर्टाइजमेंट। और मम्मा का तो ऐसा जवाब मिला जो धरती पांव के नीचे से खिसक जाए। मम्मा ने कहा, जब किसी से मिलना होता है तो मम्मा यहां उस समय उनसे बात करती है, नहीं तो मम्मा इस धरती पर रहती नहीं है, मम्मा तो बाबा के पास रहती है ऊपर। जब ये बात आती है फॉलो फादर एंड मदर, कई बार ये मुरली में भी आता है, सब भाई बहने सुनाते हैं सिखाते हैं कि बाबा को मम्मा को फॉलो करें उनके फुटस्टेप्स पर। मैं कभी कभी सोचता हूं कि इसके गहराई में कितने तक हम लोग गए। मम्मा की इतनी गहरी त्याग वृत्ति के इस दुनिया से उनका कोई संबंध ही नहीं, और बाबा का फिर दूसरी साइड देखें कि सिवाय शिव बाबा की याद के दूसरा उनके बुद्धि में कोई, एक तरफ याद और दूसरी तरफ सभी बच्चों के कल्याण के लिए क्या कर सकते हैं, नए चित्र बनवाएं, नए नए तरीके निकालें, और सारा विश्व बाबा के बुद्धि में। ये भी नहीं कि एक वर्ग रहे, नहीं, कभी बाबा बड़े नेताओं के लिए कहेंगे, कभी व्यापारी के लिए कहेंगे, कभी गरीब के लिए कहेंगे, कभी विदेश वालों के लिए कहेंगे। एक ही मुरली के अंदर, मम्मा की मुरली अगर अकेले चली है तो एक सब्जेक्ट पे चलेगी और आधा पौना घंटा चलेगी, और बाबा की एक मुरली में कम से कम 20-25 पॉइंट होंगे। और बाबा कहते थे, देखो बाबा ने कितने ज्ञान रत्न आपको दिए, माला माल कर दिया। तो हंसी हंसी में हम लोग आपस में बैठ करके इवैल्यूएशन करते थे, भाई आज हमारे बैंक बैलेंस में कितना जमा हुआ, अगर 25 पॉइंट हो तो कितना जमा होगा, कम से कम एक पॉइंट की 1 लाख वैल्यू गिनती करो तो रोज का 25 लाख आपके बैंक में जमा हो रहा है, इतनी कमाई किसकी होती है क्या। ऐसा कमाई कराने वाला बाप हमें मिला है। हाँ, कोई थोड़ा सा कमाते हैं चाहे गलत तरीके से कमाते हैं तो कहते भाई ये लखपति बन गया थोड़े टाइम में, हम क्या बनते हैं। बाबा कहता है, बच्चे आप तो पद्मा पदम भाग्यशाली हो, क्या से क्या बनते हो, नर से श्री नारायण बन गए, नारी से श्री लक्ष्मी बन गए, सारे विश्व के मालिक बन गए, और आपको क्या बनना है। लेकिन उस बनने के लिए बाबा हमेशा कहते थे, बच्चे अपने अंदर विशेषता भरो, योग्यता भरो, फॉलो फादर, बाप को फॉलो करो। और बाप को फॉलो करने का भाव और कुछ नहीं, बाबा ने हालांकि वो बात बहुत बड़ी है पर इतनी सरल करके दे दी कि बच्चे देह सहित देह के सर्व संबंधों से बुद्धि को निकालकर निरंतर एक को याद करो। बड़ा मजा है उसमें। कोई कहेगा बहुत कठिन है, मैं कहता हूं बड़ा मजा है उसमें, करके देखो थोड़ा, बहुत आनंद आता है, चेहरा सदा मुस्कुराता रहेगा, और वही संस्कार ले जाएंगे जो देवताएं फिर सदा मुस्कुराते हुए देखने में आते। इसलिए बाबा के लास्ट के जो शब्द हैं, निराकारी निर्विकारी और निरहंकारी, ये बहुत गहराई है इसमें, ये महामंत्र है। इस बात को जिसने धारण किया اس کو کہیں گے آپ نے سچا سچا اس بے حد باپ کو فالو کیا، بابا جیسا نرہنکاری کوئی نہیں ملا مجھے ابھی تک، اتنی بڑی اتھارٹی ہوتے ہوئے پھر بھی کہے گا بچے یہی سمجھو اس باپ نے یہ آپ کو سنایا تاکہ بدھی اس سے لگی رہے، اور سدا کہے گا آئی ایم یور موسٹ موسٹ اوبیڈینٹ سروینٹ فادر۔ آج کوئی ہے ایسا پتا؟ الینے دیتے ہیں ایک دو کو، ارے میں نے تیرے کو پالا بڑا کیا پڑھایا لکھایا تو ابھی میرا کوئی دھیان نہیں رکھتا ہے۔ تو بے حد کے باپ کی وہ بے حد کی باتیں، یہ تو اگر سنانے لگے، اگر پوری کہانی سنانے لگوں تو آپ کو کم سے کم، زیادہ تو نہیں تو ایک سال تو یہاں بیٹھے رہنا پڑے گا۔ ایک ایک دن کی ایک ایک کہانی ہے، لیکن سار روپ میں یہی کہیں گے کہ بابا کی دل تھی۔ ونڈرفل بات، آج دنیا میں کوئی بڑے ایسے نہیں ہیں میں نے دیکھے، بابا پاؤں کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا تھا، بہت پیار سے کبھی ہم ایسا کریں بھی تو بھی پاؤں کھینچ لے گا، نہیں بچے بابا یہ سیوا بچوں سے نہیں لے سکتے، بچے تو بابا کے نینوں کے نور ہیں، اس کے لیے نہیں۔ آپ سوچئے تھوڑا، آج تو لوکک میں تو باپ ایسا ادھیکار رکھتے ہیں، ارے بچے میں نے تمہیں جنم دیا بڑا کیا پڑھایا لکھایا، تمہارا فرض بنتا ہے میری سنبھال کرو، نہیں۔ بابا نے کہا آئی ایم یور موسٹ اوبیڈینٹ سروینٹ فادر لاسٹ تک۔ ایسا باپ کلپ میں ایک ہی بار ملتا ہے، بڑے بھاگے شالی ہیں سبھی بھائی بہنیں کہ جن کو اویکت روپ سے بھی آ کر کے آج بھی ملتے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں، شکشا دیتے ہیں، پیار دیتے ہیں، اتنا مہان بناتے ہیں۔ اس بات کو سامنے رکھتے جیسے بابا یاد دلاتے ہیں، بچے اپنے بھاگے کو سدا سمرتی میں رکھو، وارے میں ایسا بھاگے کسی کا نہیں، اور ساتھ ساتھ ایک لکش رکھو کہ میرے ہر کرم سے ہر قدم پر بابا کا نام روشن ہو، ایسا سمرتی دیوس ہم سب ملائیں۔ اوم شانتی۔